हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर रेडियो उड़ान। यहाँ पर हम मौजूद हैं मानसरोवर डेंटल कॉलेज के ऑडिटोरियम में, जहाँ पर 3 दिन से एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा था। ये कार्यशाला मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की जा रही है और कार्यशाला का हमारा विषय था मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स। और इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए काफी सारे रिसर्चर्स विषय विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपने पेपर्स यहाँ पर प्रेजेंट किए। और आज समापन समारोह है, तो हमारे समापन समारोह के अतिथि हैं डॉक्टर नीरज कुमार जी, जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के। तो सर से जानना चाहते हैं उनके विचार की मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स के बारे में, वो और क्या अधिक जानकारी देना चाहेंगे। कार्यशाला वर्कशॉप जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आगे, या जितने भी लोग जिन्होंने रिसर्च पेपर्स यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, उनके लिए आगे कितनी लाभदायक।
इस कार्यशाला के विषय में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस की कार्यशालाएं हमेशा आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जो बच्चे पिछले कन्वेंशनल क्लासिकल बॉटनी या प्लांट साइंसेस से पढ़े हैं और जिनका ज्ञान टैक्सोनॉमी के बारे में जो था वो बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड मॉर्फोलॉजी था, अब उसकी जरूरत वैलिडिटी की मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स से आ गई है, जिसके आधार पे जो वैलिडिटी है मॉर्फोलॉजी की और जो चेंजेस हैं और जो जेनेटिकल चेंजेस जो कि मॉर्फोलॉजी में दिखते हैं, उसका कारण और साथ ही साथ उसका एग्जैक्ट लिंक इस मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स के वर्कशॉप्स के द्वारा उन्हें बताया जा सके, जिससे आगे जेनेटिक डाइवर्जेंस और जेनेटिक इवोल्यूशन और जेनेटिक सिस्टमेटिक्स की हम आगे और अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। और इसके लिए मैं प्रोफेसर अरुण पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने उनका जो एक असीम इसमें अनुभव है और उनका जो ज्ञान है, उसको उन्होंने मध्य प्रदेश में भोपाल में भी लाकर इस अच्छी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, मैं उसे अगेन दैट इज नॉट मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स बट दैट इज अगेन ए सिस्टमेटिक थिंग बिकॉज That belongs to science. और उन्होंने उसे उससे जोड़ दिया है और इन बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। और मैंने अभी खुद देखा कि ये जैसे ग्लोबल नाम है इस यूनिवर्सिटी का, उसी तरह से वर्कशॉप भी ग्लोबल था, पूरे जहां से बच्चे इसमें आए थे। और ऐसी स्थिति में जब ऐसे वर्कशॉप होते हैं तो रियली दैट गिव्स अस अ सेंस कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
और अब हमारे बीच है नासी भोपाल चैप्टर के सेक्रेटरी और प्रोफेसर डॉक्टर शिवेश प्रताप सिंह जी। तो हम जानते हैं सर के विचार कि मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स के बारे में और आगे क्या और कार्य किए जा सकते हैं और किस तरह से और रिसर्चेस हो सकती हैं।
धन्यवाद। यहाँ पर आने के पूर्व जैसा कि हम लोगों के मन में ये था कि ये एक जो वर्कशॉप है जो डॉक्टर प्रोफेसर पांडे सर करा रहे हैं वो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पे होगी, तो जैसे कि यहाँ पर आने पे पता चला कि ये तो एक इंटरनेशनल वर्कशॉप से भी कहीं ज्यादा है, जहाँ की कहना चाहिए कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के हर स्टेट के पार्टिसिपेंट्स और रिसोर्स पर्सन थे। जैसा कि अभी भी मैं जब से यहाँ पर देख रहा हूँ या यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिक्षा का स्तर है शासकीय और अशासकीय विश्वविद्यालयों में, उसमें यहाँ आने पर पहली बार अनुभव हुआ कि यह निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय का स्तर प्रोफेसर पांडे के सानिध्य में या उनके मार्गदर्शन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। और जैसा कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक रिनाउंड टैक्सोनॉमिस्ट थे और उन्होंने जो आज यहाँ पर किया है इसका निश्चित रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए, और जिससे कि दूसरे लोग भी आपकी प्रतिभा से और आपके नॉलेज से लाभान्वित हो, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश शिक्षा के दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है।
और अब हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश सक्सेना जी, जो कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, मैपकॉस से आए हैं सर हमारे बीच। तो आइए जानते हैं कि ये कार्यशाला लोगों के लिए कितनी प्रासंगिक, इस समय के हिसाब से टैक्सोनॉमी लोगों को कितना और जानने की जरूरत है।
जैसा कि अभी बताया, मैं मैपकॉस जिसको की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर आता है वहां से हूँ, और ये जो कार्यशाला थी अपने आप में एक बहुत अच्छी कार्यशाला थी। जैसे कि आपको मालूम है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसमें प्रतिनिधित्व था, और आज के परिवेश में बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए कि खासतौर से मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो बहुत सारी वनस्पतिक संपदा ऐसी जो लुप्त हो रही है जिनके की कंजर्वेशन की बहुत जरूरत होती है, और कंजर्वेशन के लिए एक बहुत अच्छा फील्ड है जिनके माध्यम से हम इस कार्य को कर सकते हैं। और साथ में मैपकॉस्ट आज मानसरोवर के कॉलेज के साथ ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसने की एक अनुकरणीय कदम उठाया है उसके साथ में है। आगे भविष्य में इस तरह की बहुत सारे प्रोग्राम मैप कॉस्ट के साथ किए जाएंगे, जिसमें कि डीएनए सिक्वेंसर हमारे यहाँ है वो सुविधा, जो कि अगले बार आने वाले छात्रों को प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल भी कराया जा सकेगा। इसी तरह आज की परिवेश में बहुत जरूरी है रूरल बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में गाँव के विकास के लिए बहुत जरूरी है। छात्र इससे अवगत हो, खासतौर से हमारी आम जो नागरिक है, हमारे छात्र हैं, उनको औषधि पौधों के बारे में ज्ञान हो सके ताकि उसका संरक्षण संवर्धन हो सके। और भविष्य में मानसरोवर यूनिवर्सिटी के साथ मैप कॉस्ट प्रयास करेगा कि ऐसे लुप्त हो रहे पौधों का डीएनए सीक्वेंसिंग किया जाए और टिश्यू कल्चर तकनीक के द्वारा उनका उत्पादन भी शुरू किया जाए ताकि इस संपदा को लुप्त होने से बचाया जा सके। मैं इसके लिए जो मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, रेनाउंड जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, एक चीज और बताना चाहूंगा, हर स्टेट में शेरों का संरक्षण किया जा रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या शेरों से भी कम रह गई है। तो धन्यवाद सर, आपके नेतृत्व में ये ग्लोबल मानसरोवर यूनिवर्सिटी निरंतर उन्नति करेगा, जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि महानिदेशक भी आज हमारे साथ थे, उनका पूरा सहयोग आपके साथ हो।
और आइए अब हम अंत में आपको ले चलते हैं इस वर्कशॉप के जो प्रमुख आयोजक हैं, हमारे मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण पांडे जी के पास। तो जानते हैं सर से कि ये 5 से 7 सितंबर के बीच जो वर्कशॉप आयोजित की गई, यहाँ पे काफी सारे रिसर्चर्स थे यहाँ पर, उनके लिए आगे भविष्य में और क्या लाभ इस कार्यशाला से उन्हें मिलेगा?
मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय ने इस मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया और ये अकेला विश्वविद्यालय नहीं बल्कि इस यह द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के इस भोपाल चैप्टर के सहयोग से ही इस कार्यशाला हुई है। और इस कार्यशाला में 10 प्रदेशों के 33 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, केरल से लेकर के मेघालय तक के पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युग में जो नई टेक्नोलॉजी है, नई विधा है, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों पर ही चलते रहेंगे तो उसमें नई तकनीक का समावेश नहीं होगा और ज्ञानवर्धन नहीं होगा। भारतवर्ष जैव विविधता के क्षेत्र में विश्व का एक बहुत विशेष स्थान है इसका, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ है। लेकिन जहाँ तक जैव विविधता के संरक्षण की बात है, उसके बारे में जानना टैक्सोनॉमी के माध्यम से संभव है। और जब हम उन पौधों के बारे में या जीव जंतुओं के बारे में आगे उनके जो रिलेशनशिप्स है या उनको किस तरह से हम और संरक्षण कर सके, उसको करने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए के लेवल पर जानना जरूरी है। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना, डीएनए बार कोडिंग करना और मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स के माध्यम से पौधों का डीएनए निकाल कर उनको संरक्षित भी करना है, क्योंकि जो अभी जिस तरह से डॉक्टर सक्सेना जी ने बताया कि विलुप्त हो रहे हैं पौधे, तो जो पौधे विलुप्त हो रहे हैं, क्यों नहीं हम उनका डीएनए निकाल कर कहीं एक जगह रिपोजिटरी बनाएं। हमारा ये मानना है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी रिपोजिटरी की ज़रूरत है जहाँ की पौधों के डीएनए को संरक्षित किया जा सके। उससे ये होगा आगे आने वाले समय में जब भी हमें उन पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, हम थोड़ा सा डीएनए ले करके उससे हम आगे उनके बारे में ज़्यादा जान भी सकते हैं और उनका डीएनए सीक्वेंस यूज करके हम पौधों को आगे उनके बारे में और किस तरह से बायो प्रोस्पेक्टिंग में किस तरह से यूज किया जाए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम जब अपने देश में मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स बहुत जगह पर नहीं हो रही है, आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी भी करें ताकि हम विश्व स्तर पर अपनी टैक्सोनॉमी को ले जा सकें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक भारतवर्ष के अंदर ही अपने कार्य को कर रहे हैं, बल्कि विश्व स्तर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का डीएनए एक्सट्रैक्शन करें, एम्प्लीफिकेशन करें और उनसे उनके फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करें और ग्लोबल लेवल पर जो फाइलोजेनी कहलाती है वो आगे चल करके उसको हम अपने इंडियन प्लांट्स को उसमें समाहित कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है आजकल जो पेटेंट वाली प्रॉब्लम है। हमें मालूम है कि पहले नीम का और बासमती राइस का या और चीज़ों का पेटेंट कहीं और किसी अन्य देश ने कर लिया था, तो उसके लिए अगर हम पहले से ही मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के माध्यम से अगर डीएनए निकाल कर रख लेते हैं तो हम कोई भी देश ये चुनौती नहीं दे सकता है कि हाँ ये हल्दी या नीम बासमती हमारा है। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स इसलिए भी आवश्यक है कि हम अपने जो परंपरा है, जो हमारा डाइवर्सिटी है, जो वेल्थ है हम कहेंगे बायोलॉजिकल वेल्थ, उसको हम बचा सकें और आगे आने वाले समय में इसका उपयोग करें। तो आवश्यकता इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिस्ट इस काम में आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित हों, ताकि और जो नहीं आ सके, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास 20 प्रतिभागी आने वाले थे और अब 33 हो गए, और अभी हमारे पास 20 अप्लीकेशन पड़ी हैं उन लोगों की जिन्हें हम अपनी कार्यशाला में नहीं बुला सके। तो हम तो आभारी हैं द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के कि उन्होंने इसमें सहयोग दिया, और आगे आने वाले समय में हम एक लंबी बड़ी 5 से 7 दिनों की कार्यशाला भी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से भोपाल में ही करेंगे, अन्य स्थानों पर भी इस तरह की कार्यशालाएँ आयोजित की। एक चीज़ और कि हमारे बीच ये बड़ी खुशी की बात है और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज कुमार जी हैं, और डॉक्टर शिवेश प्रताप सिंह जी जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज भोपाल चैप्टर के सेक्रेटरी हैं वो हमारे बीच हैं, और हमारे डॉक्टर राजेश सक्सेना जी जो बहुत ही एक्टिवली हमारे सारे कार्यक्रमों में भाग भी ले रहे हैं, और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से हम नासी के साथ मिलकर बड़े से बड़े कार्य आयोजनों को करने का प्रयास।
थैंक यू सो मच सर।